पहले तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, ब्रीद इन एंड आउट करें, अपने को हल्का छोड़ें। जो टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति। हम सब आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं, ये शरीर लेती हैं, शरीर रूपी कपड़ा लेती हैं, आवरण लेती हैं। हर आत्मा में अपने एक जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बॉडी में भी अपना एक जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और उन्हीं उसी के अनुसार उसकी पर्सनालिटी बनती है। करीब 150,000 से ज्यादा प्रोटीन्स बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर कहीं भी प्रोटीन्स डैमेज होते हैं तो बीमारी आती है। हर आत्मा के अंदर जो अपने गुण शक्तियां हैं वो उसकी इनहेरेंट रहती है। और अगर देखें 7 गुणों में से हर गुण इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पर कुछ गुण ऐसे हैं जो उसकी पर्सनालिटी का फॉर्मेशन करते हैं और बीमारी का कारण या न कारण बनते हैं। कोई भी जो बीमारी आती है हम सबको, उसका कारण रहता है कि कहीं ना कहीं वो गुण मिसिंग है, एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है या कम है। तो वो सिस्टम जिसमें वो गुण चार्जिंग दे रहा है वहां बीमारी आती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट सबसे है शांति, जिसको हम कह लें साइलेंस, प्यार, लव और खुशी। दो इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, पूरे लाइफ का खेल खिलाते हैं। एक है लव, एक है फियर, डर। ये दो इमोशन पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, खेल खेलते हैं। अगर डर ज्यादा है, जो आज के समय में बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय मैं जो क्वेश्चन भी सुन रहा था, चाहे यहां है चाहे बाहर के लोग हैं, सेम के सेम क्वेश्चन रहते हैं और सेम प्रॉब्लम रहते हैं। इनमें है जो कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं, एक पूरा नेटवर्क चेंज हो गया है, पूरा वाइब्रेशन लेवल वर्ल्ड का चेंज हो गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब बिना कारण से भी प्रॉब्लम आ रहा है। मैं ठीक हूं, मेरी मेंटल लेवल ठीक है, मेरा परसेप्शन ठीक है, मैं पॉजिटिव हूं, मैं मेडिटेशन भी करता हूं, पर पता नहीं कहां से नेगेटिव थॉट आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, बिना कारण से अंदर आ जाती है। मैंने लास्ट एक महीने में तीन मिले, तीनों ने ये कहा मैं पॉजिटिव हूं, मैं योग करती हूं, पर पता नहीं ये कहां से आ जाता है। वो भी लेवल बिल्कुल डाउन वाली लेवल। ये क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो परमधाम से लाइट आ रही है, पावर आ रहा है, प्यूरिटी आ रही है, आत्माएं सब नीचे है, मेजॉरिटी आत्माएं नीचे आ गई हैं, वो पावर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे वो पावर बढ़ रहा है, प्यूरिटी का, पवित्रता का इंट्री कर रहा है, और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, नेगेटिविटी बढ़ रही है। और इसीलिए जरूरी है कि हम यूज करें। ज्ञान का अर्थ ही है, जितने भी क्वेश्चन थे, हमारा ज्ञान सुपरफिशियल नहीं है, थ्योरी नहीं है, सूक्ष्म है, डीप है। जब तक मैं उस चीज का अनुभव नहीं करूंगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, तो ताकत नहीं आएगी। मैं अपने को बोल रहा हूं, 100 बार बोल रहा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, पर उसका मैं अगर अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं, और केवल ऊपर ही ऊपर रहेगा। और जब प्रॉब्लम आएगा, वो ऊपर वाला सॉल्व नहीं कर सकता, जब तक वो मेरी पर्सनालिटी, मेरा अनुभव नहीं हो जाए। तो नॉलेज के साथ साथ विजडम भी चाहिए, और मेन चीज है रोज मैं अपने को सर्च करूं। अगर मेरे को शांति देनी है, खुद को अनुभव करना है, तो रोज मैं अपने अंदर बैठकर सर्च करूं, सर्च लाइट करूं, और उस सर्चिंग में, एनालिसिस में ये देखूं कि मैं क्यों उससे घबरा रहा हूं, मेरे को वो नेगेटिव प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, और उसको ठीक करके उसका अनुभव करूं। क्योंकि बाबा ने हमें बताया, हम शांति देवा हैं, शांति के कुंड हैं। और ये भी बताया मुरली में बाबा ने, आने वाले समय में हर बाबा का बच्चा शांति के गोले, साइलेंस के गोले फेंकेगा। गोले का अर्थ क्या हुआ? वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। हर आत्मा के अंदर वाइब्रेशन अनादि है, हमारा अनादि आदि स्वरूप है ही पवित्र और शांत स्वरूप। जब हम ऊपर रहते हैं, परमधाम में रहते हैं, वहां शांति है, साइलेंस है, पर वहां कोई अनुभूति नहीं है, वहां हर चीज मर्ज है। मैं आत्मा केवल वहां लटक रही हूं, बाकी कुछ नहीं है। सत्युग और त्रेता भी न्यूट्रल है, केवल संगम पर ही हमें पूरा ज्ञान आता है और अनुभव आता है, सुख और दुख का, दर्द का और जॉय का, ये सब अभी हम अनुभव करते हैं। तो हम शांति देवा हैं, शांत स्वरूप हैं, मेरा स्वरूप ही शांत स्वरूप है, मेरा गुण भी शांत स्वरूप है, मेरा रहने का स्थान भी शांति धाम है, मेरा पिता भी शांति का सागर है। तो सब पीस 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 है, और शांति एक मेजर शक्ति है। जहां कहीं भी प्रॉब्लम आता है, युद्ध होता है, तो पहले कहा जाता है पीस टॉक करा जाए, डायलॉग करा जाए। तो शांति सबसे बड़ा पावर है, शक्ति है। और शांति नहीं होती तो शरीर भी बीमार होता है, और वर्ल्ड में इन्वायरमेंट भी नेगेटिव होता है। आत्मा इतना पावरफुल है, जो एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि जैसे जैसे हमारा आत्मिक पावर, सोल पावर और एटॉमिक पावर एक हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, आत्मा भी एटॉमिक पावर है, बाहर भी एटॉमिक पावर है, सत्युग और त्रेता भी एटॉमिक पावर का प्रोडक्शन है, ये जब एक जैसे हो जाएंगे तो तब आत्मा के अंदर सतो प्रधानता आएगी और वही सतो प्रधानता एटॉमिक पावर का यूज प्रॉपर करेगी। अभी हम देख रहे हैं सब डरे हुए हैं एटॉमिक पावर से क्या हो जाएगा, पर धीरे धीरे जब हमारे शांति के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे तो वो एटॉमिक पावर जो नेगेटिव हो रहा है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी है, लाइट पैदा होती है, फ्यूजन और फिशन से लाइट पैदा होती है। सत्युग और त्रेता में भी हर चीज एटॉमिक रहती है, हर चीज अपने आप काम करती है, हमें बोलना नहीं पड़ता। प्लेन में भी बैठूंगा, मेरा अपना प्लेन है, खड़े हो जाऊंगा, प्लेन अपने आप उड़ेगा, मेरे को कोई चाबी नहीं लगाना पड़ेगी और न प्लेन में कोई गूगल को बोलना पड़ेगा यहां जाना है। जैसे ही खड़ा हुआ, वाइब्रेशन मैच किए वो उड़ा और जहां जाना है वहां पहुंच जाऊंगा। तो सत्युग त्रेता पूरा एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्ट है और उसकी तैयारी बाबा हमें अभी करा रहा। धीरे धीरे हमें अपने अंदर इतना अच्छा शांति के वाइब्रेशन इकट्ठा करते रहें कि हर काम हमारा शांति से हो जाए। और शांति का काम कैसे होता है? संकल्पों से होता है, नयनों से होता, शुभ भावना और शुभ कामना से होता है। जितने भी आंसर मैं सुन रहा था, हर आंसर का निचोड़ क्या था, इसेंस क्या था, जितने भी क्वेश्चन आपने पूछे उनका इसेंस क्या था, लोग सोचते हैं हमें कोई मेथड मिल जाए, कोई ऐसी युक्ति मिल जाए, मैं वो करूं वो बाकी ठीक हो जाए। अब वो समय है नहीं, और पर्टिकुलरली कोरोना के बाद तो मैंने देखा बिल्कुल ही खेल पलट गया, ऐसा पलटा कि लोगों की सुनने की शक्ति, अंदर का खालीपन emptiness बढ़ गया और उसके कारण डिप्रेशन बहुत कॉमन हो रहा है। आज वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हार्ट की बीमारी के साथ साथ डिप्रेशन आ रहा है और डिप्रेशन से सुसाइड। 5 में से 3 जो पूछने आते हैं डिप्रेशन का पूछते हैं, हमारे घर में ये है ये है। अब उसका आंसर क्या, आंसर क्या? हमने बहुत डॉक्टर देख लिए, बहुत दवाइयां ले ली, बहुत काउंसलिंग करा ली, पर ठीक नहीं हो रहा, तो घूम फिर कर बाबा का आंसर ही आता है, वाइब्रेशन दो। अब उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करना पड़ेगी, जो बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास प्रैक्टिस हमें सीखना पड़ेगी कि वीक में कुछ दिन जो पहले था, बड़ी दादी ने कराया था, मंडे को मौन रहता था, हमें भी दिन में कुछ समय अपने को देना पड़ेगा उस समय मन का मौन और मुंह का मौन दोनों करना पड़ेगा। और जितनी भी चीजें हैं, साधन हैं, उससे अलग होकर अपने को सर्च करना पड़ेगा। तब तो मैं अपने को देख सकूंगा कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। हमारा वर्ड ओम शांति है ही क्या? ओम शांति का अर्थ ही क्या है? अगर उसके अर्थ में टिक गए तो वो भी शांत स्वरूप है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरा निवास शांति धाम है, मेरा पिता शांति का सागर है। तो खेल काय पर आ गया, मेरी कनेक्टिविटी कितनी है मेरे पिता से, मेरी याद कितनी पावरफुल है। एक मिनट की भी याद अगर पावरफुल है, मैं कह रहा हूं एक मिनट की भी, जो बाबा ने कई बार कहा मेरे को एक मिनट भी याद नहीं करते। अब लोग कहते हैं हम तो 8 घंटे बैठे रहते हैं, 2 घंटे बैठे रहते हैं, एक मिनट का अर्थ क्या हुआ? मैं जो हूं जैसा हूं वैसे ही मेरे को वहां पर याद करना, मैं जो हूं जैसा हूं मेरे को वहां पर अपने स्वरूप में टिककर याद करना। चार्जिंग कब होती है इस खेल में? जब मैं अशरीरी होकर अपने कॉन्शियसनेस में टिकता हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और फिर परमात्मा को उसके घर में ही याद करता हूं मन और बुद्धि से। जैसे एक क्वेश्चन आया, उड़ने में डर लगता है, उड़ जाते हैं तो पता नहीं लगता। बाबा ने एक मुरली में कहा आपको परमधाम यहीं क्रिएट करना है, सूक्ष्म वतन यहीं क्रिएट करना है, हमें कहीं और जाना नहीं है, यहीं मेरे को क्रिएट करना है, मेरा शांति धाम यहीं है, मेरा सूक्ष्म वतन यहीं है, मैं यहीं पर फरिश्ता बनकर जा रहा हूं, तब तो लोगों को वाइब्रेशन दूंगा। तो हमारी प्रैक्टिस जो अशरीरी की है वो नेचुरल नेचर बन जाए, चलते फिरते खाते हर काम करते मैं अपने को अनुभव करूं। जो बाबा ने अब पिछले 1 महीने की मुरलियों में कहा, छोड़ना कुछ नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी बनकर मेरे को उस कॉन्शियसनेस में रहकर काम करना है। उस नेचुरल नेचर को इतना नेचुरल बना दूं कि मेरे को लगे ही नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही शांत स्वरूप। जब हम इस कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हमारा ब्रेन भी वेव्स पैदा करता है। ब्रेन में भी अलग अलग वेव्स रहती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा थीटा गामा। जब हम अल्फा कॉन्शियस में आ जाते हैं, नेचुरल अल्फा कॉन्शियस में रहते हैं, तो शरीर भी ठीक होने लगता है। हाथ उठाएं और कहें मैं शांत स्वरूप हूं, मेरा पिता शांति का सागर है। अब 1 मिनट अनुभव करें। तो दिन में 1-1 मिनट की प्रैक्टिस करो। मुझे याद आता है दादी गुलजार जी का, उनकी क्लास में हमेशा वो एक बात हमेशा, जब बाबा के दिन रहते थे 1 दिन पहले उनकी क्लास रहती थी, और एक बात हमेशा कहती थी कि कोई बड़ी बातें मत करो, छोटी बात को अच्छी तरह करो। हम क्या करते हैं योग में, बहुत बड़ा बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं और वो रिजल्ट नहीं आता है तो घबरा जाते हैं। पहला काम है हम छोटी बातों को नेचुरल नेचर बना दें। जैसे वो बताती, हमेशा बताती थी, पानी पी रहे हो, मैं आत्मा पानी पी रही हूं, शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप खाना खा रही हूं, मैं आत्मा टूथब्रश कर रही हूं, तैयार हो रही हूं। दिन में अगर हम उन छोटी बातों को अपना नेचुरल नेचर बना देंगे सोल कॉन्शियस का, जब बैठेंगे योग में वो नेचुरल नेचर होगा। पर बिना दिन में प्रैक्टिस करे मैं बैठूंगा तो वो हेवी होगा ही होगा, क्योंकि माइंड वही की वही चीजें दिन में जो हुई सामने लाएगा। मन एक दर्पण है, जो भी उसके अंदर रिकॉर्डेड हुआ है, मेमोरी डाटा गया है, जिससे संस्कार बना है, MIS, माइंड इंटेलेक्ट संस्कार सबकॉन्शियस, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। हर एक के अंदर ये MIS सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अगर सॉफ्टवेयर ठीक काम करेगा तो हार्डवेयर भी ठीक काम करेगा, अगर सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है तो ये भी बीमार होगा। इसलिए आजकल बीमारी का मुख्य कारण, अब हम नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड के सभी डॉक्टर कह रहे हैं, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस, 90% इमोशनल स्ट्रेस, चाहे वो कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसफंक्शन हुआ, ओवर प्रोडक्शन हुआ। और जो 10% भी होता है वो कुछ जेनेटिक रहता है, कुछ एक्वायर्ड जेनेटिक म्यूटेशन होता है। तो कारण बीमारी का कौन हो गया? मैं खुद हो गया। 99% बीमारी का कारण कौन हो गया? मैं हो गया, क्योंकि मेरे में अशांति है। अशांति का अर्थ क्या हुआ? मैं खुश नहीं रहता, संतुष्ट नहीं रहता, जल्दीबाजी करता, इंपल्सिव हूं, रिएक्टिव हूं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? कैरेक्टर, कि कहीं ना कहीं मेरे में शांति वाला गुण कम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब दूसरा देख रहा हूं, लोग जल्दीबाजी बहुत कर रहे हैं, इंपल्सिव, बच्चे भी हाइपर एक्टिव हो गए। और जितना हम जल्दीबाजी करेंगे, इंपल्सिव होंगे, तो शरीर बीमार होगा। इसलिए पहला कैरेक्टर हमें सीखना है, अगर मुझे शांति का कैरेक्टर लाना है, स्लो डाउन, स्लो डाउन, पॉज। एक इंग्लिश शब्द बहुत अच्छा है, जो बहुत बड़े ऑथर्स ने अपनी किताबों में दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, पॉज। पॉज का अर्थ क्या होता है? पॉज का अर्थ क्या होगा? गैप, रुको, पॉज, रुको। एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप रहता है उसको कहते हैं पॉज। एक संकल्प, दूसरा संकल्प, उसके बीच की गैप को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी, पॉज। डिसकंटिन्यूटी ही परमधाम है। मैं काफी गहरा जा रहा हूं अब। डिसकंटिन्यूटी, पॉज ही परमधाम है। अगर मैं पॉज में नहीं आता, कंटिन्यू करते रहता हूं, तो शांति कहां से आएगी? शांति का अर्थ ही है मैं बीच बीच में अशांति में भी शांत हूं। अब शांति की और गहरी डेफिनेशन, शांति का अर्थ ये नहीं, किसी ने कहा कि, कईयों ने कहा कि हम यहां आकर बैठे, अशांति में शांत रहना कहलाता है शांत स्वरूप। एक राजा था, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। राजा ने अनाउंस किया कि मेरे को एक ऐसा चित्र चाहिए जिसमें सब ठीक हो, ऑलमोस्ट सत्युग जैसा। लोगों ने अच्छे अच्छे चित्र बनाए, स्वर्ग जैसा बनाया, नदी है, पक्षी है, बर्ड है, सब बढ़िया, हवा चल रही है। पर एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया जिसमें पहाड़ है, बहुत बरसात हो रही है, हवा चल रही है, और उस पहाड़ के बीच में एक पक्षी अपने बच्चे के साथ बैठा, उस होल में बैठा देख रहा है। राजा ने उस चित्र को प्राइस दिया। लोगों ने पूछा, इतने अच्छे चित्र थे, इसको आपने क्यों दिया? राजा ने कहा, देखो कितनी बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, उसमें ये पक्षी कितना शांत होकर बैठा है। और बाबा हमारी ट्रेनिंग वो करा रहा है कि अशांति में भी कैसे मैं शांत रहता हूं। बाबा ने कहा, 5 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा क्या होगा, खून, ये वो, लड़ाइयां चलती रहेगी, पर आप जहां पर हो, जिधर हो, उस समय में 1 सेकंड में अंदर चला गया। उसकी प्रैक्टिस बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो इसलिए बीच बीच में कट करो। मेरे को एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आया, रियल एग्जाम्पल। बॉम्बे में आयश शाह फुटपाथ पे अपने पिताजी के साथ ही उनको काम में सहयोग देती है। फुटपाथ पे ही फादर काम करते हैं छोटा, और वो लड़की वहीं पर पढ़ती है, रात को स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ रही है, और 10वीं का एग्जाम पास किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, इतनी आवाजें, इतनी कारें, इतना हल्ला, इतना वो, और उसने फोकस करके पास करके एग्जाम पास कर लिया। लोग इतने खुश हो गए कि उसको फ्लैट लेके दिया और उसको 3 साल के लिए कॉलेज की एडमिशन दिलवाई। अब आप बताओ, हल्ला, अशांति, नेगेटिविटी, उसमें शांत रहना। शांति में शांत तो सब लोग रह सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अशांति में शांत रहना वो बाबा ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि आने वाला समय वो होगा, कुछ काम नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया, कोई काउंसलिंग काम नहीं करती, अब कितना भी किसी को समझाओ कोई काम नहीं करता, क्या काम आता है? आज लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं। लोग कैसे हो गए, टच मी नॉट, मेरे को टच नहीं करो, मेरे को बोलना नहीं, बोलोगे तो प्रॉब्लम। तो लोग ऐसे हो गए तो उस समय क्या करना है? वाइब्रेशन देना। वाइब्रेशन वो खुद नहीं लेगा, हमें उसको देना है। उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो डिप्रेशन में है, उसको बोलो योग करो, वो नहीं कर पाएगा, तो करना किसको है? हमें उसको अपने पावरफुल वाइब्रेशन से, बाबा से कनेक्ट होकर देना है। और उसकी तैयारी बाबा पहले से करा रहा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। जैसे बताया, लोगों को अब ज्यादा नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए मुक्ति। ज्यादा आत्माएं वो आ रही हैं, उनको सुख का कोई मजा नहीं। तो इसीलिए शांति हमारा बेसिक इन रूट जेनेटिक मटेरियल है। अगर शांति नहीं तो बाकी गुण भी प्रॉब्लम में रहेंगे। और इसलिए इसकी प्रैक्टिस हमें धीरे धीरे खुद के ऊपर करते रहना। हाथ उठाएं और कहें शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, मेरा हृदय शांत स्वरूप है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, मेरे वाइब्रेशन चारों तरफ जा रहे हैं, तो छोटे ब्रेक, छोटी छुट्टी, छोटा पॉज खुद को देते रहें। उस ऑथर ने बताया कई कंट्रीज में हमारे से ज्यादा स्ट्रेस है, पर उनके मेथड क्या है, बीच बीच में वो पॉज देते हैं। हम लोग क्या हो गए, आदि हो गए हैं एक्शन के, अगर एक्शन नहीं तो डिप्रेशन। कोरोना काल में यही हुआ, कुछ है ही नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं है, कुछ सेवा ही नहीं है, तो लोग खाली हो गए। अब उस लोनलीनेस को, अकेलेपन को एंजॉय करना ही मेडिटेशन है, क्योंकि अगर मैं अपने अकेलेपन को, लोनलीनेस को एंजॉय नहीं कर पाता तो डिप्रेशन आएगा। मेरे को कईयों ने कहा अगर आवाज नहीं होती ना टीवी की, हम लोग वो हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इसलिए हम कुछ सॉन्ग बजा देते हैं, कुछ टीवी ऑन करते हैं, देख नहीं रहे पर साउंड आ रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए। एक्शन है तो ठीक है, एक्शन नहीं है तो प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, बिना एक्शन के भी, बिना साउंड के भी मैं निराधार हूं। बाबा की ट्रेनिंग क्या है, कोई आधार नहीं, कोई अभी एक वीक पहले की मुरली, बाबा ने कहा लाल लाइट भी, उस समय लाल लाइट थोड़ी होगी जब होगा टका टक 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 टक, उस समय जहां हो जैसे हो, जिधर हो, काम पर हो, सड़क पर हो, कहां हो, वहीं रुक जाना पड़ेगा। और उस एक सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया, माइक्रो सेकंड में अंदर घुस गया, अपनी स्थिति में आ गया तो बच गया। फिर बाबा ने कहा उनको वो मिलेगा सिग्नल, जिसको आजकल कहते हैं कैचिंग पावर। कैचिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट है आज के संगम के समय पर। निराधार रहना है तो मेरे को कैचिंग पावर लेने आना पड़ेगा, और कैचिंग पावर कौन ले सकता है, हाँ बताइए। कैचिंग पावर, इस पे एक अच्छा लेक्चर कोरोना टाइम पे हुआ था, कैच कौन कर सकता है, चाहे फिजिकल कैच क्रिकेट का और चाहे अंदर का। फिजिकल कैच भी क्यों छूटता है कई बार अच्छे खिलाड़ी से, क्या हुआ, एक तो वो बॉल की डायरेक्शन समझ नहीं पाया, दूसरा वो फोकस नहीं था हुआ। ऐसे ही अंदर की कैचिंग पावर क्या है, कौन कैच करता है, कैच कौन करेगा, मन और बुद्धि। खेल पूरा कहां चल रहा है, फिर से आ जाए MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरा सीक्रेट ही यही है। बाबा ने जो भी सीक्रेट बताया वो इधर ही है, सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में कुछ नहीं है। हार्डवेयर तो इसका एक्सटेंशन है, मन, बुद्धि, संस्कार। अगर मन भाग रहा है, क्लियर नहीं है, बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं है, मन बुद्धि, तो वो कैच नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर कई संकल्प चल रहे हैं, हजारों थॉट्स चल रहे हैं, टक 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 टक, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, फाइलें खुली हुई है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड माइंड, जो सबसे बड़ा तनाव का कारण आज का है। पहले तनाव का कारण अलग था, जब हम लोग 2000 में लेक्चर लेते थे। अब 2020 के बाद तनाव का कारण डिफरेंट हो गया, बदल गया, पलटा मारा। अब क्या हो गया, कई चीजें, कई फाइलें अटकी हुई हैं, खुली हुई हैं। ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। इसीलिए एक ऑथर ने एक वर्ड दिया, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तनाव का दूसरा कारण फोमो, FOMO। फोमो का अर्थ क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी मैं यहां भी चले जाऊं, वहां भी चले जाऊं, वहां भी चले जाऊं, वहां भी चले जाऊं, वहां भी चले जाऊं, तो भागेगा ही, वो भागता ही रहेगा। मुझे क्या करना है? संगम का अर्थ ही क्या है बताइए, एक अच्छा शब्द दीजिए। संगम का अर्थ ही क्या है? मन मना। अच्छा, करिए मन मना भाव करते हैं, फिर ब्रीद आउट करें, रिलैक्स हो जाएं, पॉज दें, बिल्कुल नहीं सोचे, कुछ नहीं हूं, बिल्कुल ढीला ढीला। पॉज का अर्थ होता है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट दे रहा हूं, कहीं नहीं, ये बेस्ट ऑथर्स ने वर्ल्ड के अपनी दो किताबों में दिया था, इसका और क्लियर करता हूं, क्योंकि इससे मैंने बहुत सीक्रेट सीखा। कई कंट्रीज में उनके अपने अपने तरीके हैं अपने में जाने का। एक कंट्री का तरीका है, जब वो काम से लौट कर आते हैं शाम को, अपने में बैठकर वो करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांस है, कुछ भी करते हैं जो अच्छा लगता है। एक कंट्री का था, वो हर संडे को खिड़की से बाहर देखते हैं, क्योंकि वहां विंडोज बंद रहती है, बर्फ गिरती है, तो वो खिड़की से बस देखते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत टेंस हो जाते हैं। मेडिटेशन कोई सीरियस बात नहीं है, मेडिटेशन का अर्थ है कि हम अपने में बैठ गए हैं, अपने से बात कर रहे हैं, अपने संकल्पों को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव आ रहे हैं, जाने दे रहा हूं, अपने से लड़ नहीं रहा हूं, कन्फ्लिक्ट में नहीं हूं, जो आ रहा है देख रहा हूं, साक्षी होकर, उपराम होकर, और जो अच्छे संकल्प मेरे को लग रहे हैं उनको लिखकर यूज कर रहा हूं। जितने भी मिलियनर बिलियनर बने, अभी मैं देख रहा था रिसेंट, उनका अगर पढ़ें, सब बिलियनर ट्रिलियनर कैसे बन गए, उनके अंदर जो आया उन्होंने वो किया, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, गट फीलिंग, आत्मा की आवाज। हम इतने ऑक्यूपाइड हो गए हैं इतनी फाइलें खुली हुई है, इतना भागदौड़ में लगे हुए हैं कि वो चीज हमारी अंदर की आत्मा के अनद की, आत्मा के परम धाम की भूल गए। और वो जब अनद भूल जाता है, अपने स्पेस में जाना भूल जाते हैं, तो कई तरह के प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। और सॉल्यूशन, समाधान एक ही है, उसमें बैठ गए। कभी कभी मैं लाइफ का अर्थ यही देता हूं, LIFE। लाइफ का अर्थ है LI, लुक इनसाइड, FE, फायर एक्सटर्नली। पहले अंदर देखो और फिर बाहर का मैच खेलो। कोई भी प्रॉब्लम आने का कारण है, कहीं ना कहीं मैं अपने को नहीं देख रहा हूं, इसलिए वो प्रॉब्लम आ गया है। अब उसका सॉल्यूशन निकालना है तो मेरे को फिर वहीं जाना पड़ेगा। थोड़ा अगर मैं शांत हो गया उस समय सॉल्यूशन आ जाएगा, समाधान आ जाएगा। जो बाबा कहता है कारण का निवारण करना है, समस्या का समाधान करना है। प्रॉब्लम भी मन और बुद्धि में ही है और सॉल्यूशन भी मन और बुद्धि में। मन ही डरा रहा है, डरा कौन रहा है? मन में ही डर के थॉट्स आ रहे हैं, फियर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, खालीपन आ रहा है, क्या होगा विचार आ रहा है। कोरोना के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं वो आ गया है एंजाइटी। एंजाइटी का अर्थ क्या है? चिंता। जबकि हमें सब ज्ञान है, आत्मा का सब ज्ञान है, फिर भी एंजाइटी आ गई, क्योंकि मन ही डराता है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, पहला उसका अपना नेगेटिव थॉट, उसका अपना नकारात्मक विचार, मैं ठीक नहीं, आई एम वर्थलेस, वो है। दूसरा है अपने सम्मान को, अपनी वर्थ को कम समझना। तीसरा है गिल्टी कॉन्शियस। ये तीन ही आदमी को खा जाते हैं, और तीनों हमें लाना नहीं है। जब कभी भी ऐसा लगे मेरे में वो आ रहा है, उसी समय हाथ खड़ा करो और कहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा मेरे साथ है, इस समय सब ठीक है। उस समय वर्तमान में आकर अपने से कनेक्ट हो जाओ। ज्यादा सॉल्यूशन हमें निकाल लें, परमात्मा हमें मदद करता है, सपोर्ट करता है, पर निकालना तो मेरे को ही है। तो खुद में उस समय जाकर उस नेगेटिव इरा को, प्रोग्राम को ठीक करना है। जो मेरा नेगेटिव प्रोग्राम बिना कारण खोल गया उसको ठीक करना है। और उसमें सबसे मदद करती है हमारी शांति की शक्ति और पवित्रता, दोनों एक दूसरे से ब्लेंडेड है। शांति है तो पवित्रता है, पवित्रता है तो शांति है, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। अब इसको बढ़ाएं कैसे, शांति की शक्ति को? दो कैरेक्टर हैं, अंतर्मुखता, ये अव्यक्तवाणी के ही पॉइंट दे रहा हूं, अंतर्मुखता और एकांतवासी। मुरली का मंथन, अंतर्मुखता का अर्थ है कि मैं अपने अंदर बैठा, जो मैं बता रहा था। एकांतवासी यानी एक संकल्प, एक शक्ति को लेकर उसका मनन चिंतन करना, दिन भर करो, तीन हफ्ते तक करो, एक ही संकल्प को, एक ही गुण को, एक ही शक्ति को लेकर उसका मंथन करो। हमारा ब्रेन 3 महीने लेता है एक गुण एक शक्ति को लेने में। नया रूट ब्रेन में तब बनता है जब हम उसको एक ही संकल्प का चिंतन करते रहते हैं और वो हमारा सबकॉन्शियस में प्रोग्राम बन जाता है। एक आत्मा माँ के पेट से 7 साल और 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर लेती है। एक आत्मा में जस्ट देखने से, फील करने से 3 लाख प्रोग्राम 7 साल 9 साल तक चला जाता है। उसके अंदर वो प्रोग्राम है। अब उसने अगर डर के लिए है, अशांति के लिए है, वायलेंस के लिए है, जो भी देखा फील किया वो आ गया। अब न चाहते हुए बड़े होने पर वो प्रोग्राम उसकी पर्सनालिटी बन जाता। जितने भी न्यूरोटिक और साइकोटिक प्रॉब्लम होते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा बचपन का खेल खेलता है। इसीलिए एक फिजियोलॉजिस्ट ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि प्रोटीन हमारे शरीर में, जो मैंने कहा 150,000 है, उस प्रोटीन अच्छा या बुरा बनता है सिग्नल से। और वो सिग्नल डैमेज कहां से होते हैं? 3 तरीके से। एक ट्रॉमा, यानी कोई उसको वो हुआ डैमेज, यानी कोई खराब घटना हुई उसने अपने अंदर रख दी। दूसरा टॉक्सिन्स, तीसरा है थॉट्स, संकल्प। अब हमारा पूरा खेल क्या है? थॉट्स के ऊपर बना हुआ है। वाणी का रोल कम होता है। पूरा हमारे संकल्पों का खेल है। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका कारण मेरे संकल्प है। जो मैंने 6 महीने पहले सोचा, 3 साल पहले सोचा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही हो रहा है जो मैंने सोचा। तो कारण कौन है? मैं ही हूं। अगर मैं ही नेगेटिव थॉट को बार बार सोचता हूं, बार बार वर्णन करता हूं, तो वो होगा ही होगा। मैं सबको कहता हूं मैं बीमार हूं, बीमार हूं, ये हूं, ये हूं, वो थॉट पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, घूम रहा है, और वो होगा ही होगा। वो वापस आएगा, है तू बीमार है। तो हमें क्या करना है? उस समय अपनी नेगेटिविटी का वर्णन कभी भी नहीं करना है, उसको बड़ा नहीं करना है, अपने पॉजिटिविटी को उससे कम कर देना है। हाँ, हाथ उठाए। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, I am beautiful, I am healthy, I am wealthy, I am beautiful. खुद को देखो, खुद को कहो, yes, I am beautiful, I am healthy. जो मैं मन से अपने 50 trillion cells को कह रहा हूं वो वही होंगे। मैं कह रहा हूं मैं बीमार होता हूं, मेरे को सर्दी बार बार होती है, नींबू पानी पीने से ये हो जाता है, दही खाने से ये हो जाता है मेरा गला, तो वो हो गई होगा, क्योंकि आप ही कह रहे हो होता है, और वो थॉट पूरे यूनिवर्स में जाता है और यूनिवर्स से वापस आ जाता है। तो प्रैक्टिस करें अंतर्मुखता की और एकांतवासी बने। अब शांति की शक्ति मेरे में आ रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, खुद ही चेक करो। अगर मेरी खुशी की लेवल बढ़ रही है, पहला, अच्छा है। किसी भी घटना को मैं पर्सनली नहीं लेता हूं। दूसरा कारण जो मेजर प्रॉब्लम है, हम हर घटना को पर्सनली ले लेते हैं, इसलिए हमारा ईगो टकराता है और फिर रिएक्ट करते हैं। किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को पर्सनली नहीं लेना। किसी ने कुछ कहा, लेट गो करो, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग हैं। पेपर कहीं से भी किसी समय भी आ सकता, पेपर एक सेकंड में आता है। आप आराम से चल रहे हो और उसी समय देखोगे वो पेपर आ गया किसी ने। मैं टीवी पर देख रहा था, 3 दिन पहले की बात है, एक कार को किसी ने रास्ता नहीं दिया ओवरटेक करने में, तो वो व्यक्ति इतना इंपल्सिव था उसने उतरकर उसको मार दिया। अब आप बताओ, खेल एक सेकंड का, वो व्यक्ति कहीं जा रहा था बेचारा, थोड़ा शायद जल्दी में होगा, उसने देखा नहीं, ओवरटेक वाले को देखा नहीं और उसने उतरकर मार दिया। तो क्या हो रहा है, ये नेचर क्या दिखा रहा है? अभी नेचर इंपल्सिव हो गया है, रिएक्टिव हो गया है, और इसलिए हम सबको क्या सीखना है? शांत। कोई ले रहा है, दे दो, जगह दे दो, जाने दो, आप आराम से चलो, आप उसको एंजॉय करो, क्योंकि लोगों में पेशेंस, धैर्यता की कमी हो गई है। और धैर्यता की कमी क्यों हो गई है? क्योंकि शांत स्वरूप नहीं है। तो खुशी बढ़ती जा रही है। मैं कोई भी घटना को पर्सनली, इमोशनली नहीं लेता हूं। जो बाबा ने सिखाया, साक्षी उपराम अवस्था। साक्षी का अर्थ है ड्रामा में जो कर रहा है, आप उसको करेक्ट कर सकते, करो, नहीं कर सकते, साक्षी होकर देखो। बच्चे भी चेंज हो गए हैं, बच्चे भी अब मां बाप का डिफरेंट हो गए, तो उनको भी उसी तरीके से आप हैंडल करो, रिएक्शन में न करो। संतुष्टता बढ़ती जा रही है, सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, खत्म हो गया। जो मेरे पास है उसको आप अच्छी तरह एंजॉय करो, विस्तार को समेटो, एक्सपांड नहीं करो, सार में आ जाओ। जितना सार में आ जाएंगे उतना हमारी शांति की लेवल बढ़ती जाएगी। चलिए पूछिए क्वेश्चन, अब भी है तो फिर मैं वाइंड अप करता हूं। दुख का कारण है कि कहीं ना कहीं हम इमोशनली उससे अटैच हैं, चिपके हुए हैं। हमें इसीलिए बाबा का जो मेन शब्द था, साक्षी होकर, ट्रस्टी होकर खेल को खेलना है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है। कहीं भी अगर मैं इमोशनली अटैच हूं किसी भी चीज से, वस्तु से, वो दुख का कारण बनेगी। तो इसीलिए डिटैच होकर, नॉन जजमेंटल, आजकल ये वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है, नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का अर्थ है कि मैं वहीं जज करूं जहां जरूरी है। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक जगह पर पति पत्नी रहने आए। हर दिन पत्नी खिड़की से देखती थी पड़ोस के मकान में कपड़े टंगे हुए हैं, बोलती थी पति को कितने खराब कपड़े टंगे हैं, शायद उसको धोना नहीं आता। 1 महीना हो गया, पति हां करता था। 1 महीने बाद उस पत्नी ने देखा, बोला आज तो बहुत अच्छे कपड़े धुले हुए हैं, शायद उसको धोना आ गया। पति ने कहा आज सुबह उठकर मैंने खिड़की के कांच को साफ कर दिया। कारण क्या था? कारण क्या था? कांच वो वाला नहीं, मन रूपी कांच जो हमारा दृष्टिकोण है देखने का, जज करने का, वो कभी नहीं करें। डू नॉट सी द थिंग एज यू आर, सी द थिंग्स एज दे आर। हर चीज को क्या करना है, जैसी है उसको एंजॉय करो। जो मैंने कहा पॉज, हवा चल रही है, बर्ड्स हैं, बैठ गया। कभी कभी अपने को बिल्कुल जीरो छोड़ दो। शांति की शक्ति में इतना पावर है, जो ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल है कि कुछ लोग कुछ करने भी आए पर वापस चले गए। इतने पावरफुल वाइब्रेशन थे, ऑरा था। और आने वाले समय का डिफेंस सिस्टम ये ऑरा ही है, ये वाइब्रेशन ही है। फिजिकल डिफेंस नहीं है, हमारी आत्मा का खुद का डिफेंस सिस्टम है। और इसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहें, बिल्कुल सोचे नहीं। जो भाई साहब ने भी बताया, ओवर थिंकिंग नहीं करें, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, आत्मा को जाने दें। आत्मा का नेचुरल नेचर ही है घर को याद करना। मां से आई है, उसको मालूम है मेरा पिता कौन है, मेरा घर कौन है। जब हम उसको छोड़ेंगे तब तो वो जाएगी। बहुत संकल्प भी देना, बिल्कुल हल्के होकर उसको छोड़ें। और जो हमारा शरीर कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस है, उसको खाली निकालना है। आत्मा अनादि अविनाशी पवित्र है, शांत स्वरूप है, उसका कैरेक्टर ही वो है। पर हमने जो आवरण लगा दिए उससे वो आत्मा हेवी हो गई। चलिए खड़े हो जाएं।
एंड की सीन सीनरीज देखने माइंड को क्या रिप्रोग्राम करें?
सीन सीनरी देखने के
विनाश के, या बाबा कहते हैं ना हिम्मत होनी चाहिए।
अच्छा, सीन सीन, ओके। अब उसके लिए ही बाबा तैयारी करवा रहा है, पहले से ही तैयारी करा रहा है कि नथिंग न्यू, सब मरे पड़े हैं, नए घर, नए हम अपने घर में जा रहे हैं, परमधाम जा रहे हैं, फिर स्वर्ग जा रहे हैं। तो वो इमर्ज रहे, स्मृति स्वरूप हो जाए। जब तक स्मृति स्वरूप नहीं है तो वो दुख तकलीफ देगा ही देगा, क्योंकि नॉर्मल है। क्योंकि हम सब में अपने इमोशन हैं और तकलीफ होती है, ऐसा कोई नहीं, दुख होते हैं, सुई का दर्द होता है। पर क्योंकि बाबा हमें सिखा रहा है, और अगर हम उसकी रिप्रोग्रामिंग करा देते हैं तो वो दर्द कम फील होता है। जब हम त्रिकालदर्शी होते हैं, साक्षी होते हैं, तो वो पेन प्लेजर में कन्वर्ट हो जाता है। उपराम अवस्था, विधेयी अवस्था, जो हम सब ने दादी गुलजार जी को देखा, वो डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर सोच रहा है, डॉक्टर को पता नहीं था ये कौन है, डॉक्टर अशोक मेहता को कुछ नहीं पता था ये कौन है, पहली बार ही कॉन्टेक्ट में आए। अब वो सोच रहे हैं कि वो पूछेंगे दर्द है ये है, तो दादी उनसे पूछ रही है डॉक्टर आप कैसे हो। तो उन्होंने अपने दर्द को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। उनको वो फीलिंग नहीं आ रही है पेन की, उपराम हो गए, विदेही हो गए। और उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से ही करना है। ये काफी डीप सब्जेक्ट है, फिर कभी एक पूरा डीप है 2 घंटे का, क्योंकि यही पूरा खेल है, उपराम और विधेय अवस्था जो राजा जनक की बताते हैं। कि मैं हूं कॉन्शियसनेस में, पर मैं कॉन्शियसनेस से अलग होकर काम कर रहा हूं। मैं हूं शरीर में, पर मैं शरीर से अलग होकर वो कार्य कर रहा हूं। दर्द हो रहा है, सुई लग रही है, पर मेरे को उसका फीलिंग नहीं आ रही है। हम अपने नर्वस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं कॉन्शियसनेस से, क्योंकि हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता है कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है। जो मैं माइंड को कहूंगा बहुत अच्छा लग रहा है, सुई लग रही है, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा, तो वैसा ही होगा। पर मैं पहले से ही प्रोग्राम चालू कर दिया कि सुई लग रही है, दर्द हो रहा है, तो वो होता है। कई बार हम देखते हैं सिस्टर इंजेक्शन भर रही है, पेशेंट लेटा है, अभी लगाया नहीं है, पहले से ही कह रहा दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हो गई थी बचपन से, माँ ने उसकी प्रोग्रामिंग करा दी, चल डॉक्टर के पास सुई लगाती हूं। तो अगर 1000 बार उसके अंदर प्रोग्राम हो गया चल डॉक्टर के पास सुई लगाती हूं, तो क्या प्रोग्राम हो गया? दर्द। तो वही खुलेगा, सुई देखी, खुला, दर्द हुआ। अब मैं उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं, सुई बहुत अच्छी है, बहुत छोटी है, को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो चेंज हो गया। कॉन्शियसनेस कैन बी लर्न्ड एंड अनलर्न्ड।
मेरे मदर इन लॉ और मेरे पतिदेव जो हैं, तो दोनों को खाने पीने को लेके बहुत फोबियाज हैं। मुझे ये नहीं सूट करता, मुझे वो नहीं सूट करता, और मेरे को तो सब कुछ डाइजेस्ट करता है, पर वो लोग आधी से ज्यादा चीजें नहीं खाते हैं। तो अब मैं क्या करूं एज अ
अनलर्निंग? जैसे मैंने बताया
जी,
जो भी प्रोग्राम अंदर गया है, दही का, इसका, उसका, बचपन से गया
जी,
अब वो प्रोग्राम अंदर है
जी,
अब हमें उसको अनलर्न करना है और नया प्रोग्राम लर्न करना है
जी।
तो नए प्रोग्राम को लर्न करने के लिए हमें उनको कहना है, बैठना है, बात करनी है
जी,
कि बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती, इससे ये विटामिन मिलता है
जी।
तो जब हम सुनते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारे को ये विटामिन मिलते हैं, तो लोग खाना शुरू कर देते हैं। अरे ठीक है
जी, पर तो ये उनको बोलती हूँ, पर वो लोग बोलते तेरे को डर
इतना जल्दी नहीं होगा। मैंने कहा ना, 3 महीने तक,
3 महीने तक
एक प्रोग्राम ब्रेन लर्न करता है। तो मेरे को उसको जो नया, जो पुराना प्रोग्राम है वो खुद ही अनलर्न हो जाएगा अगर मैं उसको नया प्रोग्राम दे रहा हूँ।
ये मैं मेडिटेशन में बोलूँ उनके?
मेडिटेशन बात करना धीरे धीरे उनसे बैठकर, मेडिटेशन में नहीं, उनको बिठाना है, बात करना है। जैसे एक टीवी पे बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसकी डॉटर फादर को कहती है
जी,
कि ये खाने से आपको विटामिन मिलेंगे, B12 मिलेगा, ये मिलेगा, तो वो फादर कहता अच्छा इम्यूनिटी बढ़ेगी, आजकल ये बड़ा अच्छा शब्द है इम्यूनिटी, तो किसी को भी बोलो इससे इम्यूनिटी बढ़ती तो लोग हार लेते। तो उनको बैठना पड़ता है, डायलॉग करना पड़ता है।
ओम शांति डॉक्टर। मेरे को लगता है कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें ये डिजायर जो है ये मेन कॉज है सारे प्रॉब्लम का। सबको चाहिए कि मैं एक दिन मेरी इच्छा हो जाऊं, मेरे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, बीबी अच्छी हो जाए, ये सारा जो है समस्या का कारण है डिजायर। और आपने भी बोला है कि डिजायर को खत्म करो, ये इतना आसान नहीं है कहना, कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। तो और इसमें फिर डाइकोटमी है कि अगर डिजायर ही खत्म हो जाए तो आदमी तो आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर सकेगा। तो डिजायर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं?
ठीक, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। लॉर्ड गौतम बुद्धा से पूछा, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा रिमूव आई, और दूसरा का रिमूव वांट, देन यू विल गेट हैप्पीनेस। अब जैसे सर ने कहा डिजायर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमें डिजायर होना चाहिए, जैसे ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा ड्रीम एंड डिजायर लीड्स टू डेस्टिनेशन। ड्रीम भी चाहिए, डिजायर भी चाहिए, पर वो डिजायर जो हमें तकलीफ दे रही है, मैं अनवांटेड, मेरे पास एक कार है, अब मैं अनवांटेड दूसरी का सोच रहा हूं और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो तकलीफ देगी। तो बाबा ने हमें जो सिखाया है, जो हमारी अनवांटेड इच्छाएं हैं, जो बाबा का वर्ड है, इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, इच्छा यहां जो अनवांटेड है, मेरे लिए जरूरी नहीं इस समय, उनको मैं क्रिएट कर रहा हूं तो वो तकलीफ देगी। जो पॉजिटिव डिजायर है, गोल है बच्चे का, वो होना चाहिए ना, अच्छी चीज है। तो डिजायर दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर जो नेगेटिव डिजायर जो हमारे को उस समय उसकी जरूरत नहीं है, आई डोंट वॉन्ट, मेरे पास है वो ऑलरेडी, मैं एक और मंगा रहा हूं कि कहीं मेरे काम में आ जाएगी, तो वो तकलीफ देती है। और जो चीज घर में विदाउट यूज पड़ी रहती है 6 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा ऑथर कह रहा है, वो तकलीफ देती है, कहीं ना कहीं वही चीज फिर आपको तकलीफ देगी। तो वो चीज को लो, वो इच्छा करो जो आप यूज कर पाओ। अगर उसका यूज नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है इसको आपको दे देना चाहिए किसी को। अगर 1 साल से वैसे ही पड़ी है तो इसका मतलब मैंने अनवांटेड मंगा ली, तो उसको दे दो। खाना भी है, जैसे हम लोग सभी खाना देखते हैं, अगर ज्यादा बन गया, खा नहीं सकते, तो वो आप किसी को भी आसपास या एनिमल्स को दे सकते हैं, फीड कर सकते हैं, पर वही खाना हमने रख दिया तो वो तकलीफ देगा, शरीर में देगा। तो दोनों है, अब ये हमें देखना है कि उसका यूज क्या है उस प्रोडक्ट का जो मैं खरीदने जा रहा हूं। वो अपने मन से हम पूछते हैं, बुद्धि पूछेगी क्यों ले रहा है, क्या काम है, तू एक कार तो संभाल, दूसरी क्यों ले रहा है। तो वो हमें आना चाहिए खुद से क्वेश्चनिंग।